ओ विद्यारण्य मुनि जी द्वारा विरचित पंचदशी के तत्वदीप नामक ना तत्व विवेक नामक पहले प्रकरण में छठा श्लोक अभ्यास के लिए सबोधो विषयात् भिन्नो न बोधात् स्वप्नबोधवत् एवं स्थानत्रयप्येका संवित् तद्वद् दिनांतरे मासाब्दयुगकल्पेषु गतागम्येष्वनेकधा नोदेति नास्तमित्येका संविदेशा स्वयं प्रवा इयमात्मा परानन्दः परप्रेमास्पदं यतः मानभूवं हि भूयासम् इति प्रेमात्मनीक्षते तत्प्रेमात्मार्थं मन्यत्र नैवम् अन्यार्थमात्मनि अतस्तत् परमं तेन परमानन्दतात्मनः इत्थं सच्चित्परानन्द आत्मा युक्त्या तथा विदम् परं ब्रह्म तयोश्चैक्यम् श्रुत्यन्तेषूपदिश्यते तो सुप्तोत्थितस्य सौसुप्ततमो बोधो भवेत् स्मृतिः। जागृत अवस्था में जानने के लिए पदार्थ बहुत से हैं, अलग अलग स्वभाव के हैं, अग्नि गर्म है तो पानी ठंडा है, पृथ्वी कठोर है तो हवा कोमल है, परस्पर भिन्न स्वभाव वाले हैं। इसलिए जागृत अवस्था के ये पदार्थ विचित्र हैं, पृथक हैं, लेकिन जागृत अवस्था में ही इन पदार्थों को जानने का जो ज्ञान है, ये अग्नि है, ये उष्ण है, ये जल है, ये शीतल है, ये पृथ्वी है, ये कठिन है, ये वायु है, ये नरम है, आदि आदि, ये संवित, इसको ज्ञान बोलते हैं। जिसको हम लोग ज्ञान बोलते हैं उसी को वेदांत भाषा में संवित कहते हैं। संवित एक है, इसी तरह स्वप्न में भी पदार्थ हैं, स्वप्न में वही पदार्थों का संस्कार मात्र है, स्वप्न में पदार्थ नहीं है। स्वप्न में न अग्नि है, न तेज है, न वायु है, न आकाश है, न पृथ्वी है, पदार्थ नहीं है, पदार्थों का संस्कार है। स्वप्न दृष्टा संस्कार को ही पदार्थ की तरह देखता है। वे भी पृथक पृथक हैं, लेकिन स्वप्न का संबित स्वप्न संबित कोई एक है। इसी तरह सुसुप्ति अवस्था है, तीसरी अवस्था सुसुप्ति अवस्था है। सुसुप्ति अवस्था में सभी पदार्थ जागृत के जो जितने भी भिन्न भिन्न स्वभाव वाले पदार्थ हैं, स्वप्न के जितने भी संस्कारज पदार्थ हैं, सभी पदार्थों की घनीभूत अवस्था है। पदार्थ नहीं है लेकिन पदार्थों की घनीभूत अवस्था है। उस घनीभूत अवस्था को वेदांत ने सभी का कारण भी कहा है। आकाश घनीभूत अवस्था, वायु घनीभूत अवस्था, तेज घनीभूत अवस्था, जल घनीभूत अवस्था, पृथ्वी घनीभूत अवस्था, उस घनीभूत अवस्था को ही विद्यारण्य मुनि जी ने यहां तमह शब्द द्वारा संबोधन किया। वो तमह है, तम शब्द का अर्थ तमोगुण नहीं लेना, यहां तम शब्द का अर्थ अज्ञान अविद्या। इसलिए उसको कारण भी कहा गया है। किसका कारण? इस सभी का कारण। सुसुप्ति अवस्था में पदार्थ घनीभूत अवस्था में रहते हैं, इसलिए तुम्हें सुसुप्ति अवस्था का पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है। पदार्थ पदार्थ के रूप में रहता होता तो पदार्थ का ज्ञान होता, पदार्थ पदार्थ के रूप में नहीं रहता है, पदार्थ घनीभूत अवस्था में रहता है। पदार्थ के घनीभूत अवस्था को ही वेदांत में अज्ञान कहा, अविद्या कहा। जब तुम सुसुप्ति अवस्था में जाते हो तुम्हें पदार्थों के घनीभूत अवस्था का बोध होता है। किसका बोध होता है? पदार्थों के घनीभूत अवस्था का बोध होता है। इसीलिए उसको इस पंचदशी में विद्यारण्य मुनि ने सौसुप्त तम ये कहा। सौसुप्त तम का अर्थ सुसुप्ति अवस्था में प्रतीत होने वाला तम, उसको सौसुप्त तम, सुसुप्ते भव सौसुप्त। सुसुप्त में क्या होता है तो पदार्थ के घनीभूत अवस्था होती है। सुसुप्त अवस्था में क्या रहता है? संसारी लोग कहते हैं कुछ नहीं रहता है, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि कुछ का घनीभूत अवस्था रहता है। कुछ का मतलब जागृत में जो कुछ हैं पदार्थ, पदार्थ को ही कुछ कहेंगे ना। जब आप ये कहते हो सुसुप्ति अवस्था में कुछ नहीं रहता, कुछ का अर्थ पदार्थ हो गया। कुछ नहीं रहता ये ठीक कह रहे हो, कुछ माने पदार्थ नहीं रहते हैं, लेकिन पदार्थों के घनीभूत अवस्था रहता है। एक वस्तु अनेक वस्तु के एक हुए हुए अवस्था को ही क्या कहेंगे? घनीभूत अवस्था। पदार्थ अलग अलग जो रहते थे वो सब पदार्थ एक होकर जहां रहते हैं उसको घनीभूत अवस्था कहेंगे, उसी का नाम तम बोध है। सुसुप्ति अवस्था का तम, सौसुप्त तम, वो तम ज्ञात होता है कि अज्ञात होता है? अज्ञान ज्ञात होता है कि अज्ञात रहता है? पदार्थ कभी ज्ञात हो सकते हैं, कभी अज्ञात भी हो सकते हैं, ये तो आपके अनुभव में आ ही रहे हैं। संसार के ऐसे पदार्थ बहुत से हैं, वो पदार्थ कभी ज्ञात हो सकते हैं और बहुत से पदार्थ तो अज्ञात ही रहते हैं। अनंत पदार्थों में से कितने पदार्थों को तुम जानते हो और वो पदार्थ ज्ञात हुए हैं तुम्हारे सामने? इसीलिए जैन दर्शन में एक सूत्र आता है, अनंत धर्मकम वस्तु, तत्वार्थ सूत्र नामक एक ग्रंथ है जैन दर्शन का, जैन धर्म का नहीं है दर्शन का है। हमारा सनातन धर्म में वेदांत दर्शन के लिए जैसे ब्रह्म सूत्र है, उसी तरह जैन दर्शनों के लिए तत्वार्थ सूत्र है। वे लोग ब्रह्म सूत्र नहीं पढ़ेंगे, वो तत्वार्थ सूत्र पढ़ेंगे। तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र की कल्पना की है, रचना की है, वो सूत्र है अनंत धर्मकम वस्तु। संसार में अनंत वस्तु है और हर वस्तु में अनंत धर्मता है। कोई भी वस्तु एक ही धर्मी नहीं है, एक धर्म से युक्त नहीं। धर्म माने स्वभाव। ये फूल एक या दो स्वभाव, एक या दो धर्म से युक्त नहीं है। ये फूल इतने धर्म से युक्त है कि तुम उसका पता ही नहीं लगा सकते हो, तुम जान ही नहीं सकते हो सभी धर्म का। तो अनंत धर्म कम वस्तु, तुमने इस फूल को देखा तो फूल के आगे के वस्तु को तो तुमने देखा, वो तो ज्ञात हो गया, जो देखा वो ज्ञात हो गया, लेकिन फूल के जो पीछे के वस्तु हैं वो देखा नहीं, इसलिए क्या हुआ? अज्ञात रह गए। इस वस्तु के दो चार धर्मों को तुम जान सकते हो। कितने धर्म हैं? क्या सभी धर्मों को तुम जान सकते हो? इसीलिए पदार्थों का ज्ञान सामान्य व्यक्ति को, पदार्थों का ज्ञान अधूरा ही रहता है। जैन दर्शन के सूत्र की बात में कह रहा हूं, सामान्य व्यक्ति को पदार्थों का ज्ञान अधूरा ही रहता है। कोई कोई व्यक्ति जो विशेष व्यक्ति हैं उनको ही पदार्थ प्रत्यक्ष होता है। पदार्थ प्रत्यक्ष तभी होगा जब पदार्थ के सभी धर्म का ज्ञान होगा। जैन दर्शन की मान्यता यह है, इस पदार्थ को प्रत्यक्ष तभी कहा जाएगा इसमें विद्यमान सभी धर्मों का ज्ञान तुम्हें होगा, तो तब तो यह पदार्थ क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। एक धर्म को, दो धर्म को, चार धर्म को जानते जान लेने मात्र से प्रत्यक्ष नहीं होगा, बाकी धर्म तो तुम्हारे दृष्टि में अज्ञात रह गए कि नहीं। जितने धर्म को जान रहे हो उतना तो तुमने जान लिया, वो ज्ञात हो गए, बाकी धर्म तो तुमने जाने नहीं, तो क्या हो गए? बाकी तो अज्ञात रह गए। अब वो भी अनुसंधान करते जाओगे, रिसर्च करते जाओगे, ज्ञात होते जाएंगे, रिसर्च करते जाओगे, ज्ञात होते जाएंगे, फिर भी वस्तु में विद्यमान सभी धर्म का ज्ञान तुम्हें तो कभी भी किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। तुम्हें क्या, हमें भी नहीं हो सकता, केवल एक दो पुरुष को हो सकता है। उन पुरुष का नाम है केवली। इसलिए उन लोगों ने ज्ञान के पांच भेद मान लिया है। केवली ज्ञान, केवली ज्ञान माने कोई तीर्थंकर आदि, उन लोगों को ही पदार्थ का सभी धर्म का ज्ञान होगा। इसलिए पदार्थ का प्रत्यक्ष केवली को ही होता है, और को नहीं हो सकता। अब ये बात हमारे वेदांत में इस तरह कह दी गई है, वेदांत सूत्रों में, ज्ञानी मुक्त पुरुष सर्वज्ञ होता है। वेदांत ने क्या कहा? मुक्त पुरुष सर्वज्ञ होता है। जैनियों ने क्या कहा? मुक्त पुरुष केवल ही होता है। केवल ही होता है का मतलब क्या हुआ? पदार्थ में रहने वाले सभी धर्मों को जानता है, इसलिए उसको मात्र पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है। तुमने आंख से देखी तो ये लाल या गुलाबी कहोगे, कलर देखी, और अलग अलग पंखड़ी हैं वो देखी, इसका रस कैसा है तुम्हें ये तो पता नहीं है ना। तुम लोगों के दृष्टि में इसका रस तो अज्ञात रह गया कि नहीं। तो पदार्थ या पदार्थगत धर्म कभी ज्ञात भी होते हैं और अक्सर अज्ञात भी रहते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान से सुन लेना, तमा जिसका प्रसंग चल रहा है, तमा अर्थात अज्ञान, कभी अज्ञात रहता है कि नहीं? ध्यान देकर सुनना प्रश्न। अज्ञान कभी अज्ञात रहता है कि नहीं? है?
अज्ञान कभी अज्ञात रह ही नहीं सकता है। अज्ञान जब भी रहेगा, जिसके पास भी रहेगा, वो अज्ञान क्या होगा? ज्ञात होगा। अज्ञान चाहे जागृत में रहे, ज्ञात होकर रहेगा कि अज्ञात रहेगा? हैं? अभी तुम्हारे पास जो अज्ञान है, वो अज्ञात तुम्हारी दृष्टि में ज्ञात है कि अज्ञात है? उस अज्ञान को तुम जानते हो कि नहीं? हैं? मेरे पास अज्ञान है, उसको तुम जानते हो कि नहीं? तुमने जान लिया तो अज्ञान क्या हुआ? ज्ञात हो गया। स्वप्न में जो अज्ञान रहेगा, उस ज्ञात होगा कि नहीं? स्वप्न में जो अज्ञान रहेगा, स्वप्न में ज्ञात ही रहेगा। अब तीसरी बात, सुसुप्ति अवस्था में जो अज्ञान रहेगा, वो अज्ञान ज्ञात होगा कि अज्ञात रहेगा? हैं? सुसुप्ति अवस्था में जो अज्ञान रहेगा, वो अज्ञान ज्ञात होकर रहेगा कि अज्ञात होकर रहेगा? ज्ञात ही होकर रहेगा। तो सुसुप्ति अवस्था में अज्ञान का ज्ञान हुआ, ये कैसे पता चलेगा भाई? तो तुम जब जगते हो तो उस ज्ञात का स्मरण करते हो। जागृत अवस्था में सुसुप्ति के अज्ञान का प्रत्यक्ष तो होगा नहीं। ध्यान देना, यहां ये कहने जा रहे हैं, जागृत अवस्था में सुसुप्ति के अज्ञान का प्रत्यक्ष तो होगा नहीं, क्योंकि तुम जागृत अवस्था में हो, अज्ञान सुसुप्ति अवस्था में है। अज्ञान कहां है? अज्ञान सुसुप्ति अवस्था में है। तुम अभी इस समय जागृत अवस्था में हो, तो जागृत अवस्था में रहने वाले को सुसुप्ति अवस्था में रहने वाले अज्ञान का प्रत्यक्ष कैसे होगा, अनुभव कैसे होगा? सुसुप्ति अवस्था के अज्ञान का अनुभव करने के लिए तो तुम्हें भी सुसुप्ति में जाना पड़ेगा। जब तुम सुसुप्ति में जाते हो, तब वो अज्ञान का क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा, अनुभव होगा। वो अज्ञान का तुम्हें क्या होगा? अनुभव होगा, प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष होगा मतलब अनुभव होगा। तब जागृत में आते हो तो क्या होता है? उस अनुभव का स्मरण करोगे। तुम बंबई में हो तो हरिद्वार का प्रत्यक्ष होगा? बोलो, तुम अभी बंबई में हो, क्या इस समय हरिद्वार का प्रत्यक्ष अनुभव तुम्हें हो रहा है? हरिद्वार का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें हरिद्वार जाना पड़ेगा। या हरिद्वार का प्रत्यक्ष करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? या हरिद्वार को यहां लाना पड़ेगा? हरिद्वार को यहां लाना संभव है? तब हरिद्वार को प्रत्यक्ष करने के लिए तुम्हें हरिद्वार जाना पड़ेगा, तभी हरिद्वार का प्रत्यक्ष करोगे। अब इस समय जिन जिन व्यक्तियों द्वारा हरिद्वार जाकर हरिद्वार का प्रत्यक्ष किया है, मुझे लगता है आप लोगों में से 100% सभी ने किया होगा। हरिद्वार जाकर हरिद्वार को प्रत्यक्ष आंखों से ना दिखा हुआ कोई व्यक्ति हो तो हाथ उठा लो भाई। तुम नहीं गई हो? ऐसी ये तो आश्चर्य की बात कर दिया। एक तुम निकली हो, हरिद्वार नहीं गई, तुम्हें प्रत्यक्ष नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? हरिद्वार का स्वरूप, गंगा घाट की अवस्था, वह चित्र की स्मरण तुम नहीं कर सकते हो। अब याद कर लो हरिद्वार का घाट कैसा है, हैं? जो हरिद्वार गया वो तो स्मरण कर लेगा। यहां बैठे बैठे हरिद्वार की स्मृति उसके सामने आ जाएगी, स्मरण कर लेगा। लेकिन अब तुम्हें कहें कि हरिद्वार में वो मंदिर कहां पर है, गंगा जी का घाट कैसी है, पगतिया कैसी है, तुम स्मरण कर लो, तुमसे नहीं होगा। क्योंकि जब अनुभव ही नहीं किया है तो स्मरण कैसे होगा। तुम लोगों में से अमेरिका का मैनहट्टन सिटी शहर कैसा है स्मरण कर लो। कौन कौन गए हो अमेरिका के मैनहट्टन सिटी? अमेरिका अलग चीज है, मैनहट्टन सिटी अलग चीज है। वो मैनहट्टन सिटी कैसा है? जो नहीं गया है वो क्या स्मरण करेगा मैनहट्टन सिटी कैसी है। लेकिन जो गया है उसके सामने तो वो पिक्चर फट मनासिन सिटी की, मैनहट्टन सिटी पूरे पिक्चर में आ जाएगा। वो सड़क कैसी है, वहां दौड़ने वाली टैक्सी कैसी है, हैं? वो सिटी के अंदर दौड़ने वाली मेट्रो ट्रेन कैसी है, हैं? उसके पश्चिम के साइड में क्या है, उत्तर पूर्व के साइड में क्या है, सब आ जाएगा जिसने अनुभव किया है। क्योंकि एक बार अनुभव किया है तो स्मरण में है, तो जब भी स्मरण कर सकते हो, जहां भी स्मरण कर सकते हो, स्मरण जहां भी कर सकते हो, जब भी कर सकते हो। अनुभव जहां भी नहीं हो सकता है, जहां पदार्थ है वहीं जाना पड़ेगा, या जहां तुम हो वहां पदार्थ आना पड़ेगा। पदार्थों के और तुम्हारी इंद्रिय सन्निकर्ष हुए बिना अनुभव नहीं होगा। लेकिन स्मरण के लिए पदार्थों के और तुम्हारी सन्निकर्ष होने की जरूरत नहीं है। सन्निकर्ष माने नजदीकी, जरूरत नहीं है। एक बार मैनहट्टन सिटी को देखा हुआ व्यक्ति के बाद में आंख बंद हो जाए, फूट जाए, तो भी स्मरण कर सकता है। तो सुषुप्ति में होता क्या है? तुम जब सुषुप्ति में जाते हो, सुषुप्ति अवस्था में जाते हो, होते हो, जाते हो कहो, या अवस्था में होते हो कहो, या वो अवस्था तुम्हारे मध्य में आ जाए, या फिर तुम अवस्था में जाओ, एक ही चीज है। अवस्था तुम्हारे पास आए या तुम अवस्था में जाओ, तब उस अवस्था में देखने के लिए, जानने के लिए, देखने के लिए का अभिप्राय जानने के लिए। देखने के लिए तो चक्षुरी इंद्रिय तो है ही नहीं वहां। उस अवस्था में तुम इंद्रियों को लेकर नहीं जा सकते। दूसरी बात, उस समय और उस अवस्था में मन बुद्धि को भी लेकर नहीं जा सकते। समझे कि नहीं? उस अवस्था में तुम अपने उपकरणों को लेकर नहीं जा सकते। मनबुद्धि आदि उपकरणों को भी नहीं ला जा सकते, चक्षुरादि साधन इंद्रियों को भी लेके नहीं जा सकते। वो अवस्था में तुमको अकेले जाना पड़ेगा। अब जब वहां जाते हो तो जानने के लिए पदार्थ क्या मिलता है? अमेरिका न्यूयॉर्क गए तो जानने के लिए पदार्थ मैना सिटी, वो ऊंचे ऊंचे टावर, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग। हरिद्वार गए तो कलकल मंदाकिनी, वो घाट, बहुत कुछ मिल जाएंगे देखने के लिए। सुषुप्ति में तुम जाते हो तो क्या मिलता है तुमको देखने के लिए, बोलो? क्या मिलता है बोलो ना? शांति मिलती है। एक आदमी ने कुत्ता पाल रखा था, कुतिया, उसका नाम रखा था शांति। तो खोजते हुए चला, मेरी शांति खो गई, मेरी शांति खो गई, है ए शांति आजा। तो शांति आ गई, मिल गई शांति। बाद में कहा वो शांति को किसी ने ले गया था, तो फिर उसके साथ झगड़ा हो गया तो क्या मिला? शांति मिली। हमारा तो यही तो व्यवस्था है, खोजते हैं शांति और मिलती है। पदार्थ तो कुटिया की तरह है, शांति नाम की कुटिया की तरह। वहां केवल शांति नहीं मिलती है, वहां मिलती है मूल अविद्या। उसी को यह विद्यारण्य मुनि जी ने तमह कहा, सुसुप्त तमह। वह संसुप्त तमा, वो चीज जागृत में नहीं मिलने वाली है, वो चीज स्वप्न में नहीं मिलने वाली है। जागृत में वो तम फैल कर मिलती है, पदार्थों के रूप में मिलती है। वो तम जागृत में पदार्थ के रूप में मिलेगी, और ये पदार्थ सुसुप्ति में तमा के रूप में मिलेगी। बात एक ही चीज है, है? किसान के यहां जाओगे तो वो रोटी गेहूं के रूप में मिलेगी, किसान के यहां रोटी गेहूं के रूप में मिलेगी, और घर में वो गेहूं रोटी के रूप में मिलेगी। बात समझ में आई कि नहीं? किसान के यहां वो रोटी गेहूं के रूप में मिलेगी, और तुम्हारे घर में वो गेहूं रोटी के रूप में मिलेगी। बात समझ में आ गई? जागृत में वो तम पदार्थ के रूप में मिलती है, सुषुप्ति अवस्था में ये पदार्थ तम के रूप में मिलती है। बड़े फॉर्मूले बहुत ईजी है, बड़े आराम की फॉर्मूले हैं। जागृत में ये पदार्थ, जागृत में वो तम पदार्थ के रूप में मिलती है, और सुषुप्ति अवस्था में ये तमाम पदार्थ तमा के रूप में मिलती है। वही तम कारण के रूप में वहां रहती है, वही तम कार्य के रूप में जागृत में रहती है, और ये तमाम कार्य पदार्थ कारण के रूप में हुआ। इन पदार्थों का रॉ मेटेरियल यदि खोजना हो तो कहां जाना होगा, बोलो? तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारे मकान, तुम्हारे गाड़ी, तुम्हारी दुकान, फैक्ट्री के रॉ मेटेरियल, मूल मेटेरियल के रूप में खोजना हो तो कहां जाना पड़ेगा? सुषुप्ति अवस्था में जाओ, वहां गए तो सब मिल गया है, कारण के रूप में मिल गया है। उसका बोध तुम्हें होता है। इसीलिए वहां तुम्हें बुद्धि नहीं रहती, मन नहीं रहता, इंद्रियां नहीं रहती, सारा तूफान करने वाले जो षड्यंत्र हैं, उपकरण हैं, वह उपशांत होने के कारण और वहां अन्य पदार्थ न होने के कारण तुम्हें शांति मिलती है। वह शांति तुमसे मिला है कि हमसे मिला है? इसलिए कहा है ना, सुषुप्ति अवस्था में जो शांति मिलती है तो वो शांति तुम्हारा अपना है, जागृत में जो शांति मिलती है वो कुतिया का है। किसका है बोलो? कुतिया का नाम रखा था शांति, मिल गई शांति। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। सौसुप्त तमाहा बोधो भवेत। सुषुप्ति अवस्था में जो तम है वह ज्ञात होता है। सुषुप्ति अवस्था का जो अज्ञान है वह क्या तो क्या होता है? ज्ञात होता है। और अज्ञान तो चाहे सुषुप्ति का हो, चाहे स्वप्न का हो, चाहे जागृत का हो, अज्ञान तो हमेशा ज्ञात ही होता है। अंतर है सुषुप्ति में, अज्ञान के अलावा अन्य का ज्ञात नहीं होता। साचा व बुद्धा, वो जो ज्ञात है, जो ज्ञात नहीं ज्ञान है, दो चीज हो गए ना। सुषुप्ति अवस्था में एक ज्ञात तम, दूसरा ज्ञान, तम को जानने वाला ज्ञान, तीसरा ज्ञान वाले तुम ज्ञाता त्रिपुटी। तीन चीज सुषुप्ति अवस्था में स्पष्ट सिद्ध है। ज्ञाता को ज्ञेय का ज्ञान होता है, तो ज्ञाता भी रहता है अहम के रूप में, ज्ञेय भी रहता है तमह के रूप में, ज्ञान भी रहता है तमह के बोध के रूप में, तमोबोधा। सुप्तोत्थितस्य सुप्त तमोबोधो भवेत। वहां बोध हुआ था, तम का बोध हुआ था, ये कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि स्मृति जागृत अवस्था में उसकी स्मृति होती है, और वो स्मृति सा माने सा स्मृति, जागृत अवस्था में होने वाली जो स्मृति है, किसकी स्मृति? सौसुप्त तमो बोध की स्मृति, सौसुप्त तम की स्मृति, वो तमो बोध की स्मृति जागृत अवस्था में, सा स्मृति अवबुद्ध विषय ज्ञात पदार्थ का ही हुआ करता है, हुआ करती है स्मृति। नियम क्या हुआ? स्मृति स्मरण ज्ञात पदार्थ का ही हुआ करता है, अज्ञात की स्मृति नहीं होती, अज्ञान का स्मरण नहीं होता। अब वैष्णव लोग क्या कहते हैं? वैष्णव लोग क्या कहते हैं? तुम भगवान का स्मरण करो। कहते हैं कि नहीं? संभव है ये फॉर्मूले के हिसाब से? बोलो, संभव है इस फॉर्मूले के हिसाब से? स्मरण हमेशा अनुभव किए हुए का होगा, जिसका अनुभव नहीं किया है उसका स्मरण नहीं हो सकता है। ये सर्वमान्य सिद्धांत है। अब तुम भगवान का स्मरण कर पाओगे? होगा भगवान का स्मरण? इस फॉर्मूले से तो नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। तो भगवान का स्मरण करना ये बनता ही नहीं, क्योंकि भगवान का स्मरण करने के लिए पहले भगवान का अनुभव करना पड़ेगा। अब भगवान का अनुभव करोगे, किया है किसी ने? तुम लोगों में से तो किसी ने नहीं किया। किया हो तो बोल दो भाई, हम तुम्हारे चरण छू लेंगे। भगवान का अनुभव किया है तो बोल दो भाई, चरण छू लेंगे भाई। हापुस आम का रस का तो अनुभव किया होगा, लेकिन उतनी से तो चरण नहीं छुएंगे भाई हम तुम्हारे। वो तो हमने भी किया है, है? वो तो हमने भी किया है। संसार के पद पदार्थों का अनुभव तो हमने भी किया है, भगवान के अनुभव तो फिर कैसे स्मरण करोगे? भगवान का स्मरण करने का वो लोग का अभिप्राय है नाम का स्मरण करो। इसके अलावा भगवान का स्मरण तो हो ही नहीं सकता। ये देख लो, वो जब कहते हैं कि भगवान का स्मरण करो, मतलब क्या हुआ? नाम का स्मरण करो, क्योंकि उसका नाम का तो अनुभव हुआ है, नाम ही का अनुभव नहीं हुआ है। नाम का तो अनुभव हुआ है ना, नाम के अनुभव होने में तो कोई आपत्ति नहीं है, है? शब्द प्रत्यक्ष नाम का तो हो रहा है, हजार नाम है परमात्मा का, एक नाम तुमको सुना दिया, शब्द प्रत्यक्ष हो गया। उस शाब्दिक शब्द प्रत्यक्ष नाम का तुम कभी भी स्मरण कर सकते हो, कहीं भी बैठकर स्मरण कर सकते हो, हाँ? या फिर उस परमात्मा के काल्पनिक स्वरूप का जो तुमने अनुभव किया, किसका? काल्पनिक स्वरूप का, उसका तो अनुभव नहीं किया, ये तो श्योर है, पक्की बात है। काल्पनिक स्वरूप का तो अनुभव किया है ना, है? उसके कल्पना से जो मूर्ति बनाई गई है, आकार प्रकार दी गई है, गर्भ जो रखे हो तुमने ठाकुर जी, वो तो काल्पनिक स्वरूप है। तुम्हारे घर में रखे हुए जो ठाकुर जी है वो मेटेरियल है कि नहीं? वो पदार्थगत ठाकुर हैं कि चैतन्यगत ठाकुर है? पदार्थगत हैं, चांदी के होंगे, सोने के होंगे, पीतल के होंगे, मार्बल के होंगे, लकड़ी के होंगे, किसी न किसी के होंगे, किसी पदार्थ का ही ना होगा। उसमें जो आकार प्रकार दी गई है वो काल्पनिक है। अब वैष्णव लोग ये कहेंगे कि उसका स्मरण कर लो। तो तुम्हें जब ये कहा जाता है कि ठाकुर का स्मरण करो, तो तुम आंख बंद करके तुरंत अपने कमरे में, पूजा के कमरे में जो चांदी के सिंहासन में रखे हुए छोटे से, उसका स्मरण करोगे, और किसका करोगे बोलो? और कोई उपाय है? है और कोई उपाय? ठाकुर का स्मरण करना, नाम का जप करो, ठाकुर का स्मरण करो। कौन से ठाकुर का? काल्पनिक स्वरूप का स्मरण करो। लेकिन एक बात और मैं कहूंगा कि काल्पनिक के स्मरण से विशेषता यह है कि अकल्पनीयता का अनुभव हो सकता है। कल्पना के माध्यम से अकल्पनीय, अकल्पित का अनुभव हो सकता है। जैसे खुफिया विभाग वाले किसी अपराधी के स्केच फोटो लेकर चलते हैं, है ना? फोटो बनाते हैं उस अपराधी का, कल्पना करके एक फोटो बना लिया, ऐसा ऐसा उलिया का आधार में उन्होंने स्केच करते हैं, एक फोटो बनाते हैं और वो फोटो लेकर चलते हैं। कहीं कोई व्यक्ति उसके आकार प्रकार का मिल जाता है तो उसको पकड़ लेते हैं। माध्यम क्या लिया था? कल्पना का। और मिला कौन? सच मिला कि नहीं? इतना ही फॉर्मूला है वैष्णवों का। वैष्णवों का फॉर्मूला ये है बस। भगवान का स्मरण करो का मतलब नहीं तो स्मरण करना बनेगा नहीं, क्योंकि कभी अनुभव ही नहीं किया तो क्या स्मरण करोगे? तो काल्पनिक स्वरूप का स्मरण करो तो तुम्हें उसके प्रभाव से सचमुच में मिल सकते हैं। एक पुलिस को, गुप्तचर पुलिस को मिल सकता है फोटो के माध्यम से अपराधी, तो तुम्हें भगवान क्यों नहीं मिल सकता है भाई? बोलो, मिल सकता है। तो इतने अभिप्राय है, नहीं तो साच अवबुद्ध विषया अवबुद्धम तत्तदात्मा। ये निश्चित हो गया है कि सुसुप्ति में तुमने हा तमा अवबुद्धम, तमा को अज्ञान को प्रत्यक्ष अनुभव किया है। जागृत में उसका तुम स्मरण करते हो किस रूप में? अहम सुखम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम, आज मैं बड़े आनंद से सोया क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं जाना। कुछ भी का अर्थ जागृत में जाने जाते हैं, कुछ भी का अर्थ स्वप्न में जाने जाते हैं, जो स्थूल पदार्थ और उसके संस्कार, ये दोनों को वहां मैंने नहीं जाना। यही तो कुछ भी नहीं जाना। तो कुछ भी नहीं जाना माने तमह अज्ञान को जाना। अब ये बोध जागृत का शब्द स्पर्श आदि विषय और उसका ज्ञान, स्वप्न में शब्द स्पर्श आदि विषयों के संस्कारों का बोध और उसका बोध, सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान का बोध। ये तीन बोध तीन अलग अलग नहीं है, बस एक ही है। तीनों बोध एक है। बोध 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 में अंतर नहीं होता। बोध के बोध्य विशेषण में अंतर हो सकता है। बोध का जो बोध्य है, ज्ञान का जो ज्ञेय है, ज्ञेय के विशेषणों में अंतर हो सकता है, लेकिन उन ज्ञेय विशेषणों को हटा दो तो बोध 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 में क्या अंतर रहेगा? इसलिए बोध एक है। सबोध हो, छठा श्लोक, सबोध हो सुषुप्ति अवस्था का तम को जानने वाला जो बोध है, स्व विषयाद भिन्न, कोई भी बोध अपने विषय से भिन्न होता है। फूल का बोध फूल से भिन्न होगा, होगा कि नहीं? इस फूल का जो ज्ञान है वह ज्ञान फूल से भिन्न होगा कि नहीं? फूल टेबल में है और फूल का ज्ञान आपके पास है, भिन्न हो गया कि नहीं? फूल यहीं का यहीं रह जाएगा और वह ज्ञान आपके साथ चला जाएगा, भिन्न है कि नहीं? अभिन्न होता तो फूल या तो तुम्हारे दिमाग में फूल चला जाता या फिर तुम्हारा फूल का ज्ञान यहीं रह जाता, शायद प्रेमपुरी में सुने हुए ज्ञान की तरह यही रह जाता है। ऐसा नहीं होता है। इसलिए सबोध वो जो बोध है, ज्ञान है, स्व विषयात भिन्न। तो जागृत बोध जागृत विषयात भिन्न, स्वप्न बोध स्वप्न विषयात भिन्न, सुषुप्ति बोध सुषुप्ति विषयात भिन्न। सुषुप्ति विषय क्या है? तम, तम से भिन्न है वो बोध, तम से भिन्न है, यानी अज्ञान का ज्ञान अज्ञान से भिन्न है। सबोधो विषयाद भिन्नो नबोधात स्वप्न बोधवत। विषय से भिन्न तो हो सकता है, स्व विषय से भिन्न तो हो सकता है, लेकिन बोध से भिन्न नहीं हो सकता है। तो सुषुप्ति अवस्था का तम बोध जागृत अवस्था के शब्द बोध से भिन्न नहीं हो सकता, शब्द विशेषण नहीं रहेगा बोध, तम विशेषण नहीं रहेगा बोध, तो बोध में कोई भिन्नता नहीं है। एवं इसी तरह स्थानत्रयपि एका सम्मित। स्थानत्रय माने जागृत स्वप्न सुसुप्ति, तीनों अवस्था में संबित यानी बोध, संबित माने ज्ञान। स्थानत्रय अपि एका संबित तत्वत दिनांतरे, इसकी व्याख्या कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।